कबीर ने अपने राम को सत्व स्वरूपी कहा है। वे आजीवन सत्य की तलाश में रहे। वह उन्हें राम नाम के रूप में उपलब्ध हुआ था। सत्य प्रकाशी गुरु ने इस सत्य स्वरूपी राम से परिचित कराया था। लोक और वेद की राह पर निरर्थक चलते हुए उन्हें रास्ते में अचानक गुरु मिल गए थे। उन्होंने हाथ पर एक दीपक रख दिया था और कबीर ने देखा कि उस दीपक से सारा अंधेरा एकाएक मिट गया था। तब से लेकर जीवन भर कबीर ने यहाँ जहाँ भी सत्य का प्रकाश देखा, वही श्रद्धा से झुक गए और उल्लसित भाव से उस सत्य को राम कहकर स्वीकार किया। इस दृष्टि से उन्होंने न पशु का भेद किया, न पक्षी का। स्त्री पुरुष जाति धर्म का कोई हिसाब कबीर ने नहीं किया। जाति धर्म, हिंदू मुसलमान या ऊंच नीच का भेद तो खैर वे मानते भी नहीं थे, लेकिन जिसे वे बुरा मानते थे उसमें भी अगर कहीं सत्य का प्रकाश दिख जाए तो उसको राम कहते उन्हें थोड़ी सी हिचक नहीं होती। माया के प्रसंग में हमें देखने का अवसर आएगा कि स्त्री को कबीर सबसे हीन, गंदी, भ्रामक और माया का साक्षात विग्रह समझते हैं। पर यदि ऐसी स्त्री में भी सत्य, पतिव्रता, एक निष्ठता और तन मन का संयम दिख जाए तो वे उसके सामने उसी तरह झुक जाते हैं। पृष्ठ संख्या 43। सख्त की अपेक्षा सूकर उन्हें इसलिए अच्छा लगता है कि कम से कम सूकर गांव की गंदगी तो मिटाता है। सख्त की माँ से वैष्णव की कुतिया उन्हें गुणों के कारण ही प्यारी है। अपने को राम कहने वाले कबीर कुत्ते की एक निष्ठ स्वामी भक्ति देखकर स्वयं को राम का कुत्ता कहते कोई संकोच नहीं अनुभव करते। वैसे जब कुत्ते की लालच का प्रसंग आता है तो कबीर उसे एकदम अस्वीकार कर देते हैं। ठीक यही स्थिति राम, कृष्ण आदि अवतारों के संबंध में भी है। कोई भी अवतार हो, कबीर को अगर उसमें किसी सत्य का झलक मिल जाए तो वह उसे राम की तरह याद कर लेते हैं। जो सूकर और कुत्ते जैसे नीच पशु में रामत्व देखकर उल्लसित होता हो, वह अवतारी राम में अपने राम की झलक देखकर उल्लसित हो, यह नितांत जायज है। पैराग्राफ चेंज। कबीर जीवन भर समझाते रहे कि राम रूप नहीं, गुण की संज्ञा है। रूप या देह तो नश्वर है, आना जाना है, झूठा है। सत्य है राम जो न पैदा होता है, न मरता है, न आता है, न जाता है और किसी भी स्थिति में सच्चा बना रहता है। कबीर ने इसी रूप में ब्रह्म का आधुनिकीकरण किया था। उन्होंने अपने समस्त जीवन में जिन बहुत सारे सत्यों का अनुभव किया था, राम उनमें सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण अतः परम सत्य था। लेकिन परंपरावादियों की समझ में यह नहीं आता। पृष्ठ संख्या 44। इस सत्य स्वरूपी राम को न उनके समकालीन समझ सके, न परवर्ती। उल्टे कबीर पर ही आक्षेप लगाया कि उन्हें राम की समझ नहीं है। पैराग्राफ चेंज। कबीर ने कहा, दशरथ सूत तिहलोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। मानस के बाल कांड में गोस्वामी जी ने दशारथी राम और परब्रह्म राम की भिन्नता अभिन्नता के संबंध में पार्वती द्वारा शिव से प्रश्न पूछवाया है, जो ठीक वैसा ही है जैसे प्रश्न कबीर पांडे से पूछा करते हैं। पार्वती ने शिव से पूछा, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जो नृप तयन तो ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। इस प्रश्न का जवाब देने के पहले शिव जी राम को आना पर अपनी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। गोस्वामी जी जैसे शुद्ध वैष्णव प्रकृति के व्यक्ति जो दुर्भाव को अशोभन और असभ्य मानते हो और रावण को भी गाली देने से परहेज करते हो, राम को आना मानने वाले को अधम, मोह पिशाच से ग्रस्त, बेवकूफ, अज्ञानी, अंधा, अभागा, विषय पंकील, लंपट, कपटी, कुटिल, असंत, लाभ हानि को न समझने वाला और निर्गुण सगुण के विवेक से हीन कहा है। ब्रह्म को लेकर कबीर के विषय में आचार्य शुक्ल की धारणा भी बहुत कुछ ऐसी ही है। उनके मत से कबीरदास कभी तो अद्वैतवाद की ओर झुकते दिखाई देते हैं और कभी एकेश्वरवाद की ओर। कभी वे पौराणिक सगुण भाव से भगवान को पुकारते हैं और कभी निर्गुण भाव से। असल में उनका कोई स्थित तात्विक सिद्धांत नहीं था। लगभग उसी तरह की बात पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ने भी की है। उनके अनुसार निर्गुण और सगुण के विषय में जो विचार परंपरा सगुणवादियों और वेदांतियों की देखी जाती है, पद पद पर कबीर उसी का अनुसरण करते दृष्टिगोचर होते हैं। कोई पुराण ऐसा नहीं है जिनमें परमात्मा का वर्णन इसी रूप में न किया गया हो। पुराणों का सगुणवाद जैसे प्रबल है, वैसा निर्गुणवाद भी। वे भी वेदांत के भाव से भावित हैं और वैष्णव पुराणों में उनका बड़ा ही हृदयग्राही विवेचन है। चाहे कबीर साहब हो अथवा 15वीं सदी के दूसरे निर्गुणवादी, उन सबकी मार्गदर्शक गुप्त रूप से पुराण है। कबीर के निर्गुण राम को लेकर अभिव्यक्त की गई प्रतिक्रियाएं, नतीजे और उनके अतिमानव के संबंध में व्यक्त प्रतिक्रियाओं से कितना विलक्षण साम्य रखती है। इस तरह की अस्वीकृतियां आधुनिक और विद्रोही मनुष्य की नियति है। कबीर जानते थे कि लोग उनके मर्म को नहीं समझते, अतः उन्हें पागल मानते हैं। उन्हें इससे एतराज नहीं है, माना भाई कि सारी दुनिया चतुर है और मैं पागल हूँ। खैर, अपनी बुद्धि का ख्याल रखो, मैं बिगड़ा हूँ, दूसरे तो न बिगड़े। लेकिन कबीर को मालूम है कि बिगड़ा कौन है, भ्रम किसे लगा है। वस्तुतः पागल वह है जो स्वयं को नहीं पहचानता। राम के रंग में रंगा हुआ कबीर क्या पागल होगा? पैराग्राफ चेंज। कबीर इन प्रतिक्रियाओं से घबराने वाले जीव नहीं थे। उन्होंने जिस राम नाम से प्रेम किया था, उसे वे अच्छी तरह जानते थे। प्रेम के मार्ग पर चलने के पहले जो सिर को अपने ही हाथों काट कर धरती पर रख चुका हो, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? अतः सत्य को कहने करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अपने वर्तमान के प्रति तीव्रतर ससंगति वाला व्यक्ति मनुष्यता के सामने उपस्थित संकट और संतरास को समस्त मानवता के प्रतिनिधि के रूप में भोगने के लिए प्रतिश्रुत और कृत संकल्प होता है। पृष्ठ संख्या 46। अपने प्रयोजन के प्रति उनकी दृष्टि कभी धुंधली नहीं होती। परंपरित मृत मूल्यों, विचारों, रूढ़ियों और लोकशास्त्र की निरर्थक जकड़बंदियों के सामने वह सीना तानकर खड़ा हो जाता है, तो खड़ा ही रहता है। झुकना उसे नहीं आता। वह उन दुनियादार लोगों से भिन्न होता है जो जानबूझकर सत्य को छोड़ देते हैं और झूठ से संबंध बना लेते हैं, या लोक की लज्जा से सत्य बोलना बंद कर देते हैं। जानते बूझते हुए कंचन ब्रैकेट में शुद्ध स्वर्ण, छोड़कर कांच ब्रैकेट में शीशा, कचाई अपने अपनाने वाले दुनियादार कबीर के आदर्श नहीं थे। अतः उन्होंने अकुंठ भाव से जो सच समझा, उसे कहने करने में कभी हिचक नहीं दिखाई, क्योंकि वे कहने के लिए कहने में विश्वास नहीं रखते थे, करने के लिए कहने में विश्वास रखते थे। पैराग्राफ चेंज। विद्रोही का संतरास भोग रचनात्मक होता है। वर्तमान की मूल्य मूढ़ता उसे चैन नहीं लेने देती, अतः उसको तोड़ने और नए मूल्यों का संधान करने में वह अपने वर्तमान के छोटे से छोटे विवरण को महत्वपूर्ण मानता है, और उन विवरणों की कार्य कारण परंपरा को समझकर नए सत्य का संधान पाता है। अपने परम सत्य ब्रैकेट में राम के संधान में कबीर ने भी ऐसा ही किया है। उनकी वाणियों से पता चलता है कि इस परम सत्य की खोज में उन्होंने लोक वेद की काफी खाक जानी थी। इसी लोक वेद की राह पर सत्य की खोज में चलते हुए हरि की कृपा से उन्हें गुरु मिल गए थे। कबीर की इस सत्य संबंधी खोज और उनकी कार्य कारण परंपरा को समझ लेने से यह समझने में सुविधा होगी कि उनका ब्रह्म का आधुनिकीकरण मूल्य मूढ़ नहीं, मूल्य मूढ़ता से जन्मा है, और यह मूल्य मूढ़ता कबीर को अपने मूल्य मूढ़ता एकदम नहीं थी। पृष्ठ संख्या 47। यह मूल्य मूढ़ता थी उन लोगों की जो मोहवश परंपरा की लाश को सीने से चिपकाए 3 लोक 14 भुवन में घूमते रहते हैं, और इस प्रकार न स्वयं समाधान पाते हैं न दूसरों को पाने देते हैं। पैराग्राफ चेंज। कबीर ने राम की राह पर चलने वालों को देखा था। वल्कल वस्त्र, वन का निवास, ज्ञान ध्यान में के निरर्थक उपदेश, वेद और वाद, ज्ञान त्याग और इंद्रिय विजय का अहंकार, जैसे भी हो कुटुंब का पेट भरने की कोशिश, वाम और दक्षिण के अनंत विकार, सारे लोग इन्हीं में फंसे हुए थे। कबीर को ऐसा लगा कि लोगों ने राम को खिलवाड़ समझ रखा है। पैराग्राफ चेंज। वर्तमान के प्रति संसक्त चित्त वाले कबीर ने लोगों को जिस राम की राह पर पाया था, वह राम दशरथ के घर में अवतरित होने वाला था, उसे लंका के राजा को सताया था, या फिर वह देवकी के कोख से पैदा हुआ था और यशोदा ने उसका पालन पोषण किया था। ग्वालों के संग फिरने वाले उस तथा कथित ब्रैकेट में कबीर की राय में ब्रह्म ने हाथ पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, या फिर उसने वामन का वेश बनाकर बलि को छला था, या वराह के रूप में पृथ्वी और वेद का उद्धार किया था। वह गंडक का शालिग्राम, कोल, कच्छप, मत्स्य आदि रूपों में अवतरित हुआ था। बद्रीनाथ में उसने ध्यान लगाया था। परशुराम के रूप में क्षत्रियों का नाश किया था। पृष्ठ संख्या 48। द्वारावती में उसने शरीर त्याग दिया था। जगन्नाथ में उसके पिंड को गाड़ा गया था।